मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 23 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं योगेश कुमार मौर्य अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, सुमित यादव बस्ती उत्तर प्रदेश से, रोहित दांगी उदयपुर राजस्थान से, बबलू कुमार आपका गांव है लोहची जिला मुंगेर बिहार से, हेमंत भगेरा कांकेर छत्तीसगढ़ से, शेर सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से, सुमन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से और आर्यन मुंगेर बिहार से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं सूचना के अधिकार कानून में जो भी संशोधन संबंधी विधेयक लोकसभा ने पारित किया है, अब राज्यसभा में वो जाएगा, पारित हो ही जाना है, उसको लेकर के कुछ बातें करूंगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ एक जो दूसरी खबर है उसको देख लेते हैं और सच पूछे तो अभी मैं उसकी आपको केवल सूचना मात्र दे रहा हूं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी भी है और वह चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के बारे में। अंततः भारतीय वैज्ञानिकों को यह सफलता मिली कि उन्होंने चंद्रयान 2 का बहुत ही सफलता के साथ प्रक्षेपण किया और दोस्तों इसको लेकर के वास्तव में पूरे राष्ट्र में हर्ष की लहर है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व हो रहा है और यह इस बात का भी प्रमाण है कि किस तरह से एक भारतीय संस्थान जिसका नाम इसरो है विश्व स्तरीय कार्य कर सकता है। सीधी सी बात है कि एक प्रश्न दिमाग में आता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अंतरिक्ष विज्ञान इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें जब हम इतनी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं, एक सरकारी तंत्र इतने खूबसूरती से विश्व स्तरीय काम कर सकता है तो हमारे दूसरे संस्थान क्यों नहीं कर सकते। तो मित्रों इसको लेकर के अभी डेफिनेटली आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स तो कुछ आए हैं वे मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो जब आर्टिकल्स आएंगे तब हम लोग कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। जहां तक प्री एग्जामिनेशन का सवाल है मुझे लगता है कि एक न्यूज थोड़ी सी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है और वो यह कि यह दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरेगा जो अपना चंद्रयान है और यह पहला ऐसा यान होगा जो दक्षिणी ध्रुव के समीप उतर रहा है, मतलब उस लोकेशन में उतरने वाला यह पहला यान भारत का होगा। तो दक्षिण ध्रुव को अभी आप याद रख लें, शेष जब और दूसरी खबरें आएंगी और न्यूज पेपर में हमें मिलेंगी एडिटोरियल और एडिटोरियल कमेंट के जरिए तब फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। मित्रों कल 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित हुए हैं, मतलब समझ लीजिए कि कंप्लीट हो ही जाएंगे, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है मानव अधिकार संशोधन विधेयक, ह्यूमन राइट्स से संबंधित संशोधन विधेयक। इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात जान लेनी चाहिए क्योंकि इससे पहले जो आप किताबें पढ़ रहे होंगे, आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें इस बात का उल्लेख रहा होगा कि जो मानव अधिकार आयोग होते हैं चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग होते हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इस संशोधन के द्वारा उनका कार्यकाल घटाकर 3 साल कर दिया गया है, तो ये करेक्शन आपको कर लेने चाहिए। और वैसे भी इससे पहले लिखी हुई किताबें जब आप पढ़ेंगे, मान लीजिए अगले साल ही क्यों ना पढ़ रहे हो तो उसमें 5 साल छपा हुआ होगा, तो इस बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा क्योंकि जब भी इस तरह के संशोधन होते हैं तो ये जांचने के लिए कि स्टूडेंट कितना सतर्क है परिवर्तनों के प्रति, पता लगा कि ये प्रश्न तो बहुत सरल है लेकिन पूछ दिया गया है, नई चीजों से आप रूबरू हैं नहीं तो पता लगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 5 साल लिख करके आ रहे हैं और वो गलत हो गया, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। दूसरी जो खबर है वो है सूचना अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम को लेकर के, ये भी लोकसभा से पारित हो गया है और जितने मतों से पारित हुआ है स्वाभाविक है कि वो राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा और ये संशोधन स्वीकार हो जाएगा। मैं इस संशोधन के बारे में ज्यादा बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़े से दूसरे तरीके से बात करूंगा। देखिए इस संशोधन में किया क्या गया है कि जो हमारे सूचना आयुक्त हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, इनकी सैलरी कितनी होगी, इनके भत्ते कितने होंगे और इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इन सब का निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। ये जो सूचना है के अधिकार हैं, आपको हमारा सूचना जो आयोग बनते हैं जहां सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है केंद्र में भी होते हैं और राज्य में भी होते हैं। राज्य सूचना आयोग राज्य में होते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र में होते हैं, भारत सरकार में होते हैं, राइट। तो ये स्थिति है। अब अभी तक इनका जो इनके बारे में जो फैसले लिए जाते थे, बहुत कुछ हमारे जो सूचना आयुक्त हैं उनके अनुकूल थे। एक कमेटी होती थी वो इनकी नियुक्ति करती थी, लेकिन अब उन स्थितियों को बदल दिया गया है और वर्तमान में इसके बारे में सारे अधिकार सरकार ने ले लिए हैं। फिलहाल केवल इतना ही हम जानते हैं। आज जो मैंने बात करने का निर्णय लिया है आप सबसे, वो इस तरीके से इस रूप में लिया है फ्रेंड्स, कि जब भी आप किसी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो देखिए उस तैयारी के दो आधार होते हैं, दो बिल्कुल दो स्पष्ट आधार होते हैं। पहला कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बेसिक्स को समझने के भी दो आधार होते हैं। एक है उनके फैक्ट्स, है ना, जैसे सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितना है, इनको क्या क्या अधिकार हैं, ये सारे हो गए फैक्ट्स। दूसरा है कि ये जो सूचना का जो अधिकार है इसकी फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी कहने का मतलब है कि ये जो सूचना का अधिकार लाया गया है क्यों लाया गया है, उसको हम कहते हैं फिलॉसफी। और जिस फिलॉसफी के तहत इसे लाया गया है उस फिलॉसफी को इंश्योर कर सकें, उसकी रक्षा कर सकें, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आप देखिए कि यदि आपने सूचना के अधिकार टॉपिक को तैयार कर लिया है तो क्या यह तैयारी आपकी है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है तैयारी करने का। जो सेकेंड पार्ट है जो कम इंपॉर्टेंट नहीं है और यहीं पर स्टूडेंट चूक जाते हैं, वह यह कि कोई भी टॉपिक आप ले ले, कोई भी टॉपिक यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम में पूछे जाने का पैटर्न क्या होगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसका जो पैटर्न है वो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सूचना अधिकार आयोग के अधिकार क्या क्या हैं, नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि इनके आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये नहीं पूछा जाएगा। सूचना अधिकार कानून क्यों लाया गया था, ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्टेट सिविल सर्विसेज में सब पूछ लिए जाते हैं लेकिन यूपीएससी नहीं पूछेगी। तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि पूछने का पैटर्न क्या है, दोस्तों यही आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं मदद करते हैं, मदद पहुंचाते हैं। और हमेशा देखिए प्लीज, अगर आप मेरी बात पर थोड़ा भी यकीन कर सकते हैं तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी शुरू की प्रिपरेशन बहुत ठोस तरीके से होनी चाहिए और ठोस तरीके से करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, इत्मीनान की जरूरत होती है। अगर आप बहुत हड़बड़ी में करना चाहेंगे तो बात नहीं बनेगी, आप चूक जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि यहां एक है सूचना का अधिकार, हम इस पर बात कर रहे हैं और हम अब जानना चाहते हैं कि इसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप पैटर्न जानेंगे तभी आप इस टॉपिक पर अच्छे तरीके से सोच सकेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई पढ़ो कम और सोचो ज्यादा, उस पर विचार ज्यादा करो। तो विचार करने का मतलब यह नहीं है कि जो आपने पढ़ा है आप उसे मन मन में दोहराइए कि अच्छा 5 साल का कार्यकाल होता है, अच्छा इस तरह से नियुक्ति होती है, नॉट एट ऑल। ये आप विचार नहीं कर रहे हैं, ये आप रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, जो आपने रटा हुआ है उसे दोहरा रहे हैं। विचार करने का मतलब है कि उसकी जो फिलॉसफी है, उसके जो डिफरेंट एंगल्स हैं, उसके जो दूसरी चीजों से रिलेशंस हैं, एग्जामिनेशन के पूछने का जो पैटर्न है उनको ध्यान में रख करके आप उसके बारे में सोचिए, वो होता है विचार करना। और यही होता है डिस्कशन करना भी, कि आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के पैटर्न के आधार पर डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज तो बाकी सारी चीजें किताब में हैं। तो मित्रों जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो अब आप देखिए कि आपको थोड़ा सा अपने को एनलार्ज करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको सूचना के अधिकार टॉपिक पर प्रश्न मिले ही ना, तो आप क्या करेंगे, अब इसके पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे। अब यहां पर आपको सूचना के अधिकार का जो टॉपिक है उसे एनलार्ज करना पड़ेगा, उसे फैलाना पड़ेगा। एनलार्ज कैसे करेंगे, एनलार्ज करने का आधार होगा सूचना के अधिकार की फिलॉसफी। सूचना के अधिकार की फिलॉसफी क्या है, बेसिक फिलॉसफी क्या है, बेसिक फिलॉसफी है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, यानी कि सरकार निर्णय ले रही है, सरकार जो भी कर रही है उसमें खुलापन। भाई सूचना के जरिए आप यही मांगते हैं ना उनसे कि आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए। अभी तक सरकार बताने से इनकार करती थी क्योंकि कानून के द्वारा वो प्रोटेक्टेड थी, उसके पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, वो मना कर देती थी नहीं हम नहीं बनाएंगे नहीं बताएंगे। सूचना के अधिकार की जो बेसिक फिलॉसफी है वो है ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो जब आपकी पकड़ में आ जाती ट्रांसपेरेंसी तब फिर आप इसे थोड़ा सा फैलाते हैं कि क्या इस ट्रांसपेरेंसी का संबंध प्रशासन से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, सिविल सर्विसेज से है, तो आपको तुरंत पता लगेगा कि यह सिविल सर्विसेज से है। और जब हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तब आप पढ़ते हैं कि सिविल सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी लाई जानी चाहिए, सिविल सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी लाई जानी चाहिए, ये सब आप पढ़ते हैं। तो यहां अब आपने इस टॉपिक को बकायदे सूचना के अधिकार को आप देखिए ट्रांसपेरेंसी से जोड़ दिया और ट्रांसपेरेंसी के साथ ही साथ आपने इसे सिविल सर्विसेज से जोड़ दिया। फिर आप इसे थोड़ा सा और इनलार्ज करेंगे तो लगेगा कि अच्छा जो सूचना का अधिकार है क्या इसका कुछ संबंध सिविल सोसाइटीज से है, क्या इसका कुछ संबंध नागरिक चार्टर से है, तो आपको लगेगा कि हां है क्योंकि नागरिक चार्टर भी लगभग लगभग इसी बात की आपको संभावनाएं देता है, इस बात के प्रति वचनबद्ध अपनी इसी बात के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त करता है कि हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, यही तो है नागरिक चार्टर। सिविल सोसाइटीज क्या करते हैं, सिविल सोसाइटीज भी जो तंत्र है हमारा उसे अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखें कि ये जो सूचना का अधिकार है एक साथ कितने टॉपिक से जुड़ गया, यानी कि जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आप देखिए कि क्या सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है जो ट्रांसपेरेंट से संबंधित है, क्या नागरिक चार्टर से संबंधित कोई प्रश्न आया है जो पारदर्शिता से संबंधित है। इसके बाद फिर आपको अब यहां सूचना अधिकार पर तो मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको पता लगा मानव अधिकार पर आपको प्रश्न मिल गया। मानव अधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स, वहां भी कम से कहीं ना कहीं मानव के जो मूलभूत अधिकार हैं उनके रक्षा की बात की जा रही है। ये दोनों एक तरह से प्रजाति की दृष्टि से लगभग लगभग एक ही है। तो जब आप मानव अधिकार पर प्रश्न पूछे गए हैं जो उनको पढ़ेंगे तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा। अच्छा, इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए मानव अधिकार पर, यानी कि इसी पैटर्न पर सूचना के अधिकार पर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अभी वक्त मुझे इतनी ही बातें कहने की इजाजत दे रहा है, इन पर जो प्रश्न पूछे गए हैं और उनके अंदर क्या निहित है और उनका कैसे हल होगा, इन सारी बातों को लेकर के कल हम फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब चूंकि समय समाप्त हो चुका है तो मुझे इस अपने जो मुख्य विषय है उसे यहीं विराम देना होगा। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो सब मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, वो सब आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। कुछ प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं, जैसे कि सौरभ पटेल हैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से, उन्होंने मेरी लघु कथा की किताब पढ़ी है और उसमें उन्होंने कंजूस कहानी के बारे में पूछा है कि क्या ये एक सच्ची कथा है। मित्रों ये सच्ची कथा है, बाकी चीजें तो मैंने खुद कही थी और आपको मैं बता दूं जिन व्यक्ति का मैंने वहां उल्लेख किया है वो व्यक्ति वास्तव में थे और उनका नाम था डॉक्टर राम विलास शर्मा, जो हिंदी साहित्य के महान आलोचक माने जाते हैं, तो वो बिल्कुल सही है। एक स्टूडेंट हैं काजोल बिस्ट, उन्होंने मेरी स्टूडेंट इन टाइम मैनेजमेंट किताब पढ़ी और उसमें जो तीसरा पात्र है उसके बारे में उन्होंने उत्सुकता व्यक्त की है, जिज्ञासा व्यक्त की है कि इस पात्र का नाम क्या है। काजोल मैं ये बात कह सकता हूं कि आपने जिस अंदाज में अपने प्रश्न को लिखा है मैं जान सकता हूं कि आपके जेहन में वो तीसरा पात्र कौन है, तो बिना बताए ही आपके द्वारा बिना बताए ही मैं उसकी पुष्टि करता हूं कि आपने जिसके बारे में सोचा है आपने बिल्कुल सही तरीके से सोचा है। तो ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं अरविंद कुमार, अजय सिंह कथेरिया, दीपिका माहूर नगमा हरिद्वार उत्तराखंड से, अभिलाषा गैरोला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, वरुण कुमार नई दिल्ली से, अश्वनी वर्मा, निपम भाराली गुवाहाटी असम से और सोनल कहालकर नागपुर महाराष्ट्र से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।